समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के संक में सरबजीत के साथ मैं हूं नवीन सक्सेना। आज के संक में बहुत कुछ होगा, देश दुनिया की खबरें होंगी, खेलों का पन्ना होगा, इतिहास में क्या कुछ हुआ था आज के दिन वो भी होगा। लेकिन आज का दिन बहुत खास है, आज का दिन दो मायनों में खास है। एक इसलिए क्योंकि आज संविधान दिवस है, और दूसरा इसलिए क्योंकि आज राष्ट्रीय दूध दिवस है।
एंड नवीन, मे आई विद योर परमिशन ऐड टू दिस लिस्ट ऑफ मेकिंग दिस डे सो स्पेशल एंड वंडरफुल, टुडे इज आल्सो द वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे।
तो आज का दिन बहुत खास है, तीन खास बातें हमने आपको बताई हैं कि क्यों खास है, और इसके बारे में तमाम जानकारी आपके पास हम बस सबसे कुछ ही देर में पहुंचाना शुरू करेंगे। तो बने रहिए मेरे और सरबजीत के साथ अगले आधे घंटे तक। और हाँ, कार्यक्रम के आखिर में जब इतिहास की बात करेंगे ना, बात करेंगे हम एक ऐसे सिनेमेटोग्राफर की जिसने ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में कैमरे को इतनी खूबसूरती से घुमाया कि एक एक चेहरा, एक एक नक्श, एक एक अंदाज जो है वो दिल में समा गया, और आज तक हम उनके फिल्माए हुए गीतों को याद करते हैं। बहरहाल, सबसे पहले बात करते हैं संविधान दिवस की। भारतीय लोकतंत्र और इसके संवैधानिक मूल्यों के सम्मान का जो प्रतीक है वो है आज का दिन। और ये दिन भारत के संविधान की स्थापना और उसके महत्व को याद करने के लिए समर्पित है।
एंड नवीन, दिस डे हाईलाइट्स द वैल्यूज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी। ऑल दीज आर इंडीड इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर द बेसिस एंड द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी।
वाकई सरबजीत, संविधान दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता फैलाना है और अपने संविधान के प्रति सम्मान को बढ़ाना है।
एंड नवीन, लेट्स अपडेट आवर लिसनर्स दैट ऑन दिस डे ऑन इन द ईयर 2015 द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दिस डे, दैट इज नवम्बर 26th, एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंगस्ट सिटीजन्स।
सरबजीत, संविधान याद दिलाता है कि हमारा संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, कुछ पन्ने या किताब नहीं है,
बिल्कुल,
बल्कि हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने का एक स्तंभ है, एक आधार है। ये हमें समानता और स्वतंत्रता के साथ एकता और अखंडता को बनाए रखने की प्रेरणा देता है।
इंडीड, वेरी वेल सेड नवीन।
और इस दिन को मनाना न केवल हमारे संविधान के प्रति आदर प्रकट करना है, बल्कि अपने जीवन में इसे लागू करना भी है, ये बहुत जरूरी है। बहरहाल, अब नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर कि क्या कुछ हो रहा है आज देश भर में संविधान दिवस के अवसर पर। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। सरकार ने भारत के संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ की याद में आज से एक वर्ष के समारोह के शुरू करने की घोषणा की है, और इस वर्ष संविधान को स्वीकृत करने की 75वीं वर्षगांठ है, और इस उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2025 तक पूरे देश में समारोह का आयोजन किया जाएगा।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशंस एट द सुप्रीम कोर्ट दिस इवनिंग। ही विल ऑल्सो एड्रेस द गैदरिंग ऑन द ओकेजन। द प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Mr. Modi will also release the annual report of the Indian Judiciary 2023-24. Union Law Minister Arjun Ram Meghwal, Chief Justice of India, Justice Sanjeev Khanna and other judges of the Apex Court will be present on the occasion.
इस अवसर पर दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ ग्लिम्पसेस और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी नामक दो पुस्तकें भी जारी की जाएंगी, और इसके अलावा संविधान का संस्कृत और मैथिली में संस्करण भी जारी किया जाएगा। भारत के संविधान की कला को समर्पित एक पुस्तिका भी जो है वो जारी की जाएगी।
Listeners, moving on to the next big news of the day, the Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has given its approval for the PAN 2.0 project of the Income Tax Department. The financial implications for the project will be 1,435 crore rupees. Briefing reporters after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the project will have robust cyber security measures. He said that the existing system will be completely upgraded. Mr. Vaishnaw also clarified that the existing permanent account number, that is PAN, will be the same. PAN 2.0 project resonates with the vision of the government enshrined in Digital India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved investment of 1,939 crore rupees for construction of Hio Hydroelectric Project in Shiyomi district of Arunachal Pradesh. The estimated completion period for the project is 50 months. Briefing media after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the project, with an installed capacity of 240 megawatts, would produce 1,000 million units of energy. The power generated from the project will help improve the power supply position in the state of Arunachal Pradesh.
आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी है. भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में याद किए जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन की 103वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाएगा. इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह पशुधन एवं डेयरी क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करेंगे. वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शिक्षा संस्थानों में कक्षाओं पर जारी प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करने का निर्देश दिया है. पिछले सप्ताह गंभीर वायु प्रदूषण के कारण विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज जाने पर रोक लगा दी गई थी. न्यायालय ने आयोग से इस संबंध में आज निर्णय लेने को कहा है. और आज से 13वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जियो स्पेशियल सूचना प्रबंध एशिया प्रशांत सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. नई दिल्ली में भारत मंडप में शुरू हो रहे 4 दिन के सम्मेलन में भारत के 120 प्रतिनिधियों के साथ 30 देशों के 90 प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें. और अब खबर आपके शहर की, तो अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरों के साथ हैं सरबजीत.
यस नवीन, लेट्स बिगिन विद द बज फ्रॉम चेन्नई. 19 मेंबर Australian Digitech Trade Mission visited Chennai last week to showcase the country's innovative solutions in critical and enabling technology domains. The Australian Trade and Investment Commission organized the mission in collaboration with the Centre for Australia-India Relations, the Department of Foreign Affairs and Trade, Investment New South Wales, and the Department of Jobs, Tourism, Innovation and Science, Government of Western Australia. In other news, more than 500 students and NCC cadets visited the Indian Navy's warship INS Delhi, which arrived at Chennai Harbour on November 23rd as part of the Navy Day celebrations. As part of these celebrations, the headquarters of the Tamil Nadu and Puducherry Naval Area organised a special ship visit on November 24th for veterans, serving officers, sailors, defence civilians and their families. This unique opportunity allowed visitors to witness the might of the Indian Navy's Eastern Fleet firsthand. During the visit, guests were given a guided tour of the ship, offering a glimpse into the daily lives of naval personnel. News now from Bengaluru. The Air Force Station in Bengaluru celebrated the Jubilee milestone of its premier training institutes. The Communication Training Institute marked its Platinum Jubilee, the Electronic Training Institute celebrated its Diamond Jubilee, and the 16 Tetra School observed its Golden Jubilee. These institutions have played a pivotal role in shaping generations of air warriors for the Indian Air Force. Air Officer Commanding-in-Chief of the Air Force Training Command, Air Marshal Nagesh Kapoor, presided over the celebrations. He released the first day covers of the three institutes and launched the inaugural edition of Kaizen, the Journey of the Communication Training Institute, commemorative coffee table books on the Electronic Training Institute and 16 Tetra schools were also unveiled. The IIT Hyderabad and Nikon India collaboration has inaugurated its first Centre of Excellence, COE, at the Indian Institute of Technology, IIT, Hyderabad. This is to offer advanced imaging technologies to trainees, visiting scholars and collaborators across the country, fostering impactful collaborations between IIT Hyderabad researchers and Nikon teams. Nikon India is a 100% subsidiary of Nikon Corporation. The COE offers a confocal microscopic system with advanced technology. And Naveen, what's the bunch of news that you're going to share with the listeners today?
सबसे पहले हम बात दिल्ली की करते हैं और दिल्ली में भी हम अपने सुनने वालों को सरबजीत सीधा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की ओर लिए चलते हैं. एक बहुत बड़ा मेला जिसमें जैसे ही आप एंटर करते हैं ना और जब बाहर निकलते हो तो ढेर सारे बैगों के साथ निकलते हैं क्योंकि शॉपिंग का बहुत सामान होता है ना और बहुत कुछ होता है वहां. बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच चुका है. लोगों की बहुत भीड़ देखी जा रही है मेले में. देश विदेश के प्रदर्शकों के स्टॉलों पर लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं. सुनते हैं ये रिपोर्ट की क्या कुछ कह रहे हैं हमारे ये संवाददाता.
इस साल मेले में दुनिया भर से 3000 से अधिक प्रदर्शक, 49 केंद्रीय मंत्रालयों, 33 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और महत्वपूर्ण निजी कंपनियां भाग ले रही हैं. मेले में आज बड़ी संख्या में आगंतुक रसोई के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, तुर्की लालटेन, सूखे मेवे, बैग, पर्स, जूते, अचार, मसाले, तेल, पंखे, एयर प्यूरिफायर, कपड़े और सजावट की चीजें खरीदने के लिए एकत्रित हुए. आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बिहार के दीपेंद्र ने मेले में विभिन्न संस्कृतियों को देखने पर खुशी व्यक्त की.
आके इतना नया नया चीज देखने को मिलता है. एक तो हमारा जो लोकल ट्रेडिशन है या हमारी जो कल्चर है, हमारी जो पुरानी सभ्यता की चीजें हैं, हम उससे रूबरू होते हैं.
इस वर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का विषय विकसित भारत 2047 है, जो देश की स्वतंत्रता की शताब्दी तक विकास के लिए भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है. अक्षित वैद्यान.
तो ये थी खबर सीधे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की. अब बात करते हैं अगली खबर की. केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पदयात्रा में भाग लिया. ये पदयात्रा भारतीय संविधान के संस्थापक सदस्यों के दृष्टिकोण का सम्मान करने के लिए आयोजित की गई. इस यात्रा में पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत और किरण रिजिजू सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों ने भाग लिया. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल वृद्धा पेंशन शुरू करने की घोषणा की. श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बुजुर्ग नागरिकों के लिए 80,000 वृद्धा पेंशन शुरू की जा रही है. उन्होंने कहा कि इससे अब 5.5 लाख बुजुर्गों को लाभ मिलेगा. रुख करते हैं अब मुंबई का. बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने कल वित्तीय वर्ष की शुरुआत से संपत्ति कर का भुगतान न करने पर 3,000 से ज्यादा संपत्तियों को जब्त किया. इन संपत्तियों में जमीन के टुकड़े, आवासीय और वाणिज्यिक भवन और औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान शामिल हैं. मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने दो मामलों में एनजीपीएस यानी हाइड्रोफोनिक वीट को जब्त किया है, जिसका अवैध बाजार मूल्य लगभग 22 करोड़ से अधिक है. मुंबई में अधिकारियों ने कहा है कि यात्रियों ने सामान को वैक्यूम सील पैकेटों में उनके द्वारा लाए गए सामान में रखे खाद्य पैकेटों के अंदर छुपाया हुआ था. बात कोलकाता की. पश्चिम बंगाल में विधानसभा का सत्र कल से कोलकाता में शुरू हो गया. आज भारतीय संविधान की रक्षा पर सप्रस्ताव पेश किया जाएगा और उसके बाद चर्चा होगी जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष हिस्सा लेंगे. तो ये थी आपके शहरों की खबरें.
एंड लिसनर्स, टाइम नाउ फॉर सम अपडेट फ्रॉम IFFI, the 55th International Film Festival of India, underway in Goa. At IFFI, over 70 films across genres will be showcased today on the sixth day of screenings. Several of these movies, including India Votes, Stride and Beyond the Court, The Indian Wheelchair, Basketball Journey, will be featured under the Accessible India, Accessible Film section. This section highlights Indian and international films enhanced with audio descriptions and Indian Sign Language, enabling differently abled audiences to fully experience the narratives. We have a detailed report on this.
The ongoing International Film Festival of India 2024 in Goa is not just a celebration of cinema, but also a platform for innovation and awareness. Running parallel to the festival is a fiesta, an interactive hub of cultural and educational activities that has become a major attraction for attendees. Among the various stalls at a fiesta, the virtual reality VR experience on ocean pollution has garnered significant attention. The stall uses cutting-edge VR technology to transport visitors into a lifelike like Underwater World, showcasing the devastating effects of pollution on marine life. A young visitor, Nabya, shared his excitement about the experience. He said, "At first I thought it would be a simple photo exhibition like a 2D display, but once I came here and saw the VR sets, it was a completely realistic experience."
Mera naam Nabya hai aur main Bamanbar se hu. Yahan pe mujhe laga ki ek picture dikhayenge. Main aaya to dekha yahan pe VR set bhi hai aur ye bahut acha experience hai. Isme aapko fish, jellyfish sab kuch dikhai dega. Isme humko sabse zyada bataya gaya hai ki samundar mein plastic wagera bhi nahi dale.
The virtual reality concept attracted and amazed people of all age groups. Gopika, a Kerala-based participant, said, "The concept of the VR experience is based on the reality of ocean pollution. It aims to educate people and encourage them to take action to protect our oceans."
मेरा नाम गोपिका है, मैं केरला से हूँ, एक्ने यहाँ काम करने के लिए गोवा में है. जब मैं यहाँ आया फिल्म फेस्टिवल के VR के देखने के लिए आया था, बट यहाँ द कंसेप्ट इज रियल, क्योंकि हमारा ओशंस में ज्यादा पोल्यूशन सब हो रही है. उन लोगों ने एक्चुअली डिस्क्राइब किया है, क्योंकि विदाउट ओशन विदाउट वाटर, हम लोग बोलते हैं 70% ऑफ वाटर ही है, उसमें आधा पोल्यूट भी हो रही है, सो उसमें काफी एनिमल्स को भी अफेक्ट हो रही है. वो उन लोगों ने रियलिटी में दिखाया है क्या हो रहा है उसको, उन लोग अफेक्ट हो रहे प्लास्टिक से भी.
विद सच स्मॉल बट इम्पैक्टफुल इंक्लूजन्स, IFESTA हैज सक्सेसफुली कॉम्प्लीमेंटेड द फिल्म फेस्टिवल बाय ड्रॉइंग अटेंशन टू ग्लोबल इश्यूज थ्रू इमर्सिव टेक्नोलॉजी. एज IFE 2024 कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट सिनेफाइल्स, इनिशिएटिव्स लाइक द वर्चुअल रियलिटी स्टॉल अंडरलाइन द फिल्म फेस्टिवल्स ब्रॉडर कमिटमेंट टू रेजिंग अवेयरनेस एंड इंस्पायरिंग चेंज. फॉर आज सवेरे, विद दुर्गेश भदौरिया, ओम विश उपाध्याय, गोवा.
सरबजीत, अब फिल्मों की दुनिया से निकलकर अपने सुनने वालों को सीधा खेल के मैदान पर लिए चलते हैं और जानते हैं कि सरफिरोशी से कि क्या कुछ हो रहा है खेलों की दुनिया में.
नवीन, खेलों की दुनिया में सबसे पहले बात बैडमिंटन की. आज से सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हो रहा है. स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इस टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे. उधर जूनियर हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट आज से ओमान के मस्कट में शुरू हो रहा है. आमिर अली की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारतीय टीम पांचवी बार खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी. पिछली बार भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर चौथी बार खिताब जीता था. क्रिकेट की बात करें तो IPL 2025 के लिए नीलामी के दूसरे दिन कल इतिहास रचा गया, जब 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी IPL के इतिहास में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में राजस्थान रॉयल्स ने 1,10,00,000 रुपए की कीमत पर उन्हें शामिल किया. बास्केटबॉल की फीबा एशिया कप क्वालिफायर में कल भारतीय पुरुष टीम ने चेन्नई में कजाकिस्तान पर 88-69 से जीत दर्ज की. पिछले 27 वर्ष में किसी बड़ी फीबा प्रतियोगिता में कजाकिस्तान पर भारत की ये पहली जीत है. वहीं फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग टूर्नामेंट में ओडिशा FC ने कल हैदराबाद FC पर 6-0 से शानदार जीत दर्ज की. आज सवेरे के बाकी सफर के लिए वापस चलते हैं नवीन और सरबजीत की ओर.
तो सरबजीत, अब मौसम के क्या कुछ कहता है?
नवीन, I'm sure you're going to let the listeners know in detail what Delhi has to say on this front. But yes, Delhi is getting a little cold and most of us in Akashvani are adorning our half jackets and Naveen indeed is wearing a very nice one today.
Oh, thank you very much, Sarabjit. Well, और यही मौका है, नहीं तो अभी कुछ दिनों बाद ना फुल स्लीव्स निकल आएंगे, तो अभी जितने भी आपके हाफ स्लीव्स की जैकेट्स है ना.
So I buy that from you, Naveen. Meanwhile, Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 25 degrees Celsius. Maximum will be around 30 degrees. Bengaluru is expected to have clear sky becoming partly cloudy towards afternoon or evening. The minimum temperature was 18 degrees Celsius and the maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperatures will hover between a minimum of 15 degrees and a maximum of 28 degrees Celsius.
Delhi ki baat kare to nyunatam tapman aaj 12 degrees Celsius darj kiya gaya, adhiktam tapman 28 degrees Celsius rahega. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में अपने स्वेटर को उतार देंगे, क्योंकि जैसे ही एक बार सूरज ढलेगा टेम्परेचर कम हो जाएगा, सर्दी लगनी शुरू हो जाएगी, ऐसा मौसम विभाग कहता है. कोलकाता की बात करें, आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 27, न्यूनतम 16 डिग्री. मुंबई में भी हल्का कोहरा छाए रहने की उम्मीद है, तापमान थोड़ा बड़ा रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस, हाँ न्यूनतम 18 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा. तो ये थी मौसम की जानकारी और अब पलटते हैं इतिहास के पन्ने और जानते हैं कि आज का दिन क्यों खास है.
यस नवीन, लेट्स इंडीड you know, flip the pages of history, as you said, to see what makes 26th of November so, so special. So 26th November 1931, Mahatma Gandhi announced a new civil disobedience campaign in the nationalist newspaper Young India.
मैं आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूँ, बात करता हूँ 1885 की, जब आज ही के दिन पहली बार उल्का पिंड की तस्वीर ली गई थी।
1954 on this day the Atomic Energy Commission started functioning.
1932 आज ही का दिन जब महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में 10,000 रन बनाए थे।
26 नवंबर 1960 फर्स्ट एसटीडी सिस्टम ऑफ टेलीफोन द सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सर्विसेज स्टार्टेड बिटवीन लखनऊ एंड कानपुर।
1859 वो आज ही का दिन था जब चार्ल्स डिकेंस की अ टेल ऑफ टू सिटीज का अंतिम साप्ताहिक अंक साहित्यिक पत्रिका ऑल द ईयर राउंड में प्रकाशित किया गया था। और अब बात करते हैं 1865 की, लुइस कैरोल की पुस्तक एलिस इन द वंडरलैंड अमेरिका में प्रकाशित की गई थी।
एंड 1998 ऑन दिस डे द ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी। द अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से, और अब उन महान व्यक्तियों की जो कहीं ना कहीं आज के दिन से जुड़े हुए हैं और उन्हें हम याद कर रहे हैं।
सो नवीन, लेट्स बिगिन दिस सेगमेंट बाय पेइंग आवर ट्रिब्यूट्स टू टीना टर्नर। टुडे इज हर बर्थ एनिवर्सरी। एन अमेरिकन बॉर्न स्विस सिंगर, सॉन्ग राइटर, एक्ट्रेस, डांसर एंड एंटरटेनर, एंड हर सक्सेस एंड हर पॉपुलैरिटी कंसिस्टेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रॉक म्यूजिक। वी हैव दिस लवली नंबर फ्रॉम टीना टर्नर।
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract. It's physical.
तो ये आवाज थी टीना टर्नर की, महान गायिका। और अब बात करते हैं राम शरण शर्मा की, भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद, आज इनकी जयंती है। राम शरण शर्मा समाज को हकीकत से रूबरू कराने वाले अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इतिहासकारों में से एक थे। 1970 के दशक में दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में डीन के रूप में प्रोफेसर आर एस शर्मा के कार्यकाल के दौरान कई किताबें लिखी गईं। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो भारत शास्त्रियों को दिया जाने वाला सर्वोत्तम कैंपफील्ड मेमोरियल गोल्ड मेडल सम्मान उन्हें दिया गया। एशियाटिक सोसाइटी का कोलकाता द्वारा हेमचंद राय चौधरी जन्म शताब्दी स्वर्ण पदक सम्मान भी उनको दिया गया।
एंड नवीन, वी आर आल्सो इंडीड पेइंग ट्रिब्यूट्स टू Eugen George Esterman, an American pianist, and I managed to get this piece on the piano for my dear listeners.
आज जयंती है 1921 में जन्मे प्रसिद्ध उद्योगपति और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन की। भारत को दुनिया का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बनाने वाले शख्स वर्गीस कुरियन आज जयंती है। आज वो पैदा हुए थे, जाने माने थे, श्वेत क्रांति के लिए जाने जाते थे। इस शख्स ने देश को सहकारी दुग्ध उद्योग का एक मॉडल दिया था, और अपनी सोच से वर्गीस कुरियन ने दिखा दिया था कि एक छोटे से किसान पर भी भरोसा किया जाए तो किस तरह से चीजों को बदल देता है।
एंड नवीन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आई ऑल्सो एसोसिएट लॉट ऑफ यू नो अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन विद द काइंड ऑफ वर्क डॉक्टर वर्गीस डिड। आई सी अ लॉट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप व्हिच केम अप ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड स्टिल सर्वाइव्स इन द मार्केट विद द व्हाइट रेवोल्यूशन।
सरबजीत, आज पूरा देश उनके प्रयासों को याद कर रहा है। भारत में दूध की क्रांति, जिसे हम श्वेत क्रांति कहते हैं, उसको लाने का जो श्रेय है वो वर्गीस कुरियन को है, जिन्होंने भारत में दूध की कमी को दूर कर हर वर्ग तक इसकी पहुंच बनाई थी। वर्गीस ने गुजरात के आणंद में एक छोटे से गैराज में अमूल की शुरुआत की थी। जो आज घर घर की कहानी बन गया है। साल 1946 में दो गांवों के लोगों को जोड़कर डेयरी सहकारिता संघ की उन्होंने स्थापना की थी। कुरियन को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके साथ ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, कार्नोगी वटलर शांति पुरस्कार और अमेरिका के इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया। लेकिन वर्गीस कुरियन ने कुछ यूं कहा जब उनसे बात की गई।
द सीक्रेट ऑफ अमूल इज दैट इट इज अ मूवमेंट कंट्रोल्ड बाय फार्मर्स। इट इज अ मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड विद फार्मर्स एंड द कंट्रोल ऑफ द फार्मर्स वाज नॉट diminished with passage of time. Also, it was the idea of Sardar Vallabhbhai Patel, who, as you probably know, comes from a village 2 miles from Anand, a village called Karamsad. And Sardar Patel had said that till the farmers gain command over the procurement, processing and marketing of their own produce, they will not get a fair share of the consumer's rupee.
ये आवाज थी श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन की। और इन्हीं की यही कहानी पर, इन्हीं की जीवनी पर एक फिल्म बनाई गई थी मंथन, और उसका ये बेहद प्यारा सा गीत अगर हम ना सुने तो बात कुछ अधूरी सी है।
Naveen, you've indeed made the mood musical, and let me continue with it with paying tributes to Norman Alexander Milne, the great English singer, and today is his birth anniversary, and we've managed to get this number for you.
"'Twas in the year of 89 on that old Chicago line when the winter wind was blowing shrill. The winds were froze, the wheels were cold, then the air brakes wouldn't hold, and number 9 came roaring down the hill. Oh!"
सर्वजीत, किसी भी फिल्म के हिट होने में बहुत से कलाकारों का तो हाथ होता ही है, लेकिन कैमरे के पीछे कौन उस फिल्म को किस तरह से देख रहा है, बना रहा है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। वेंकटरामा पंडित कृष्णमूर्ति यानी वीके मूर्ति, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर, आज उनकी जयंती है। 1923 में उनका जन्म हुआ था। सिने जगत का एक जाना पहचाना नाम, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित थे। और अगर फिल्मों की बात करें तो उनके कैमरे का जादू, मुस्कुराते होठों की उदासी, आंखों के काले घेरों की स्याही नमी, यहां तक कि गुलाबी सर्दियों की गुनगुनाती गर्माहट और किताबों में छुपी चिट्ठियों से उठती प्रेम की खुशबू, सब कुछ कैद करता था उनका कैमरा। वीके मूर्ति कला और तकनीक का एक अद्भुत सम्मिश्रण थे। फिल्मों की बात करें तो प्यासा, कागज के फूल, चौधरी का चांद, साहिब बीवी और गुलाम खूबसूरत फिल्में बनाई। तो इन्हीं खूबसूरत फिल्मों का एक खूबसूरत सा एक मेडली हमने तैयार किया है आप लोगों के लिए। सुनते हैं और इन्हें याद करते हैं।
बगियन का मेहमान है, फिर भी जानना गलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा नादान, दिल की कहानी रंग लाई है, दिल की कहानी रंग लाई है।
आंखों में इस दिल को बसा दे तो
हम मूंद के पल को इस दिल को सजा दे तो
हम आपकी।
आज सवेर के आज के संस्करण में बस इतना ही। मैं नवीन और सरबजीत अपने एडिटर मानिक और प्रोडक्शन असिस्टेंट सुनील सिन्हा के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये प्रोग्राम आपको बेहद बेहद पसंद आया होगा।
Yes, listeners, thank you for tuning in. Have a superb day. Namaskar.